एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने भाषा को देखने समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया, फर्डिनांड डी सोस्योर। उन्हें अक्सर हम आधुनिक भाषा विज्ञान और सेमियोटिक्स मतलब संकेत विज्ञान उसका जनक मानते हैं। हमारी आज की ये जो बातचीत है ये उन श्रोतों पर आधारित है जो सोस्योर की जिंदगी, उनके काम और खासकर उनके विचारों के गहरे असर पर रोशनी डालते हैं। हमारे मकसद यही है कि सोस्योर के उन बुनियादी पर बहुत ही असरदार विचारों को समझें जिन्होंने न सिर्फ भाषा विज्ञान बल्कि आप देखिए मानविकी के कई और क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके नज़रिए ने अर्थ, संस्कृति, संचार, इन सबको समझने का हमारा पूरा ढंग ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, फर्डिनांड डी सोस्योर, उनका जन्म हुआ 1857 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड और देहांत 1913 में। अगर उस दौर को देखें ना, यूरोप में बड़ा दिलचस्प समय था वो। रोमांटिसिज्म का असर कम हो रहा था और एक नई वैज्ञानिक सोच उभर रही थी, आधुनिक सोच।
और ये भी देखिए, 1857 में ही बॉदलेर की वो मशहूर किताब आई थी ले फ्लोर ड्यू माल, और उधर फ्लॉबेर पर मैडाम बोवेरी के लिए मुकदमा चल रहा था। तो माहौल में ना एक तरह की बौद्धिक बेचैनी थी, बदलाव की आहट थी।
19वीं सदी यूरोप में अकादमिक शोध और विज्ञान का कह सकते हैं सुनहरा दौर था। खासकर जर्मन विश्वविद्यालय बहुत कठोर शोध के लिए जाने जाते थे। उस वक्त भाषा विज्ञान में ज्यादातर तुलनात्मक भाषा शास्त्र मतलब कंपैरेटिव फिलोलॉजी उसी का बोलबाला था। फ्रांस बोप, जैकब ग्रिम जैसे बड़े विद्वान वो भाषाओं के ऐतिहासिक विकास उनकी जड़ों को खंगाल रहे थे। लीप्सिक विश्वविद्यालय के जो नियो ग्रामेरियन थे, नव व्याकरणवादी, वो तो ध्वनि नियमों पर बहुत जोर देते थे, मतलब भाषाएं वक्त के साथ कैसे बदलती हैं, किन नियमों से बदलती हैं। उनका पूरा ध्यान इसी ऐतिहासिक सफर पर था, डायक्रॉनिक जिसे कहते हैं। लेकिन इसी माहौल में ना कुछ और भी चल रहा था सतह के नीचे। डार्विन, मार्क्स, ये सब दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहे थे। वियना में फ्रॉयड मन की गहराइयों में उतर रहे थे, अचेतन की संरचनाएं समझ रहे थे। पेरिस में दुर्खीम समाज को एक व्यवस्था की तरह देख रहे थे, और मेलार्मे जैसे कवि तो कह रहे थे कि भाषा असलियत का आईना नहीं है, ये तो संकेतों की एक मनमानी व्यवस्था है। तो इसी उबलते हुए बौद्धिक माहौल में सोस्योर का काम शक्ल ले रहा था। उनका ध्यान इतिहास से हटकर किसी एक वक्त में भाषा की अंदरूनी व्यवस्था पर था, उसकी सिंक्रोनिक
सिंक्रोनिक संरचना पर
और हाँ, टेलीग्राफ, टेलीफोन जैसे नए आविष्कार भी आ गए थे। उनसे भी संचार, भाषा, अर्थ, इन सब पर नए सिरे से सोचने की जरूरत महसूस हो रही थी।
अच्छा, अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो जन्म जिनेवा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पढ़े लिखे वैज्ञानिक परिवार में हुआ था। पिता कीट विज्ञानी, खनिज विज्ञानी, पर दादा प्रकृतिवादी, तो माहौल तो वैज्ञानिक था ही। शायद इसी वजह से उनकी सोच में वो एक व्यवस्था, एक बारीकी से विश्लेषण करने का अंदाज आया होगा। और भाषाओं में तो उनकी दिलचस्पी गजब की थी। सुना है बचपन से ही फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, कई भाषाएं सीख ली थी। इतनी सारी भाषाएं जानने का मतलब है कि उन्होंने भाषाओं के अंदर के ढांचों में जो फर्क है, जो समानताएं हैं, वो शायद बहुत पहले ही महसूस कर ली होंगी। और ये भी कि हर भाषा दुनिया को कैसे अलग तरह से देखती है ना?
बिल्कुल सही कहा, और वो समझ उनके काम में दिखती भी है। दिलचस्प बात यह है कि पहले तो उन्होंने परिवार की तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया जिनेवा में, लेकिन भाषा का जो जुनून था वो उन्हें 1876 में लिप्ज़िग ले गया, जो उस समय नियो ग्रामेरियन भाषा विज्ञान का कह लीजिए गढ़ था, और वहां उनकी प्रतिभा पहचान ली गई जल्दी ही। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है, सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला और अपने जीवन काल में प्रकाशित इकलौता ग्रंथ लिखा, मेमोआर सिर ले सिस्टम प्रिमिटिव दे वॉयल दौले लॉन्ग्स एंडो ओरोपियन 1889 में। ये उस समय की जो मुख्य भाषा परिवार थी हिंदी यूरोपीय, उसकी स्वर प्रणाली पर एक बिल्कुल नया काम था, क्रांतिकारी। इसमें उन्होंने सिर्फ सबूतों पर भरोसा नहीं किया बल्कि भाषा की जो अपनी अंदरूनी तर्क व्यवस्था होती है ना, उसके आधार पर कुछ अमूर्त ध्वनियों का प्रस्ताव रखा जिन्हें पहले किसी ने पहचाना नहीं था, लेरिंजियल कोएफिशिएंट्स का उन्होंने।
अच्छा, मतलब सिस्टम के तर्क से।
हाँ बिल्कुल, सिस्टम के लॉजिक से, जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी बिसात पर कोई मोहरा न भी हो तो उसके नियमों से उसकी भूमिका का अंदाज़ा लगा ले। ये उनकी संरचनात्मक सोच का पहला बड़ा सबूत था। और कमाल तो यह है कि दशकों बाद जब हिटाइट भाषा मिली तो उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई।
फिर लीप्सिक के बाद वो पेरिस गए, उस समय का बौद्धिक केंद्र, वहाँ 10 साल पढ़ाया भी। सुना है वहाँ दुर्खीम, बर्गसन जैसे लोगों के संपर्क में आए। शायद यही भाषा को एक सामाजिक घटना, एक सिस्टम की तरह देखने का उनका नजरिया और पुख्ता हुआ होगा।
फिर 1891 में वापस जिनेवा आ गए, प्रोफेसर बन गए। उन्होंने 3 बार सामान्य भाषा विज्ञान पर वो लेक्चर दिए जिनमें उनके सबसे मौलिक विचार सामने आए। लेकिन सोसियोर थे बड़े आत्मालोचक, परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं। वो अपने इन विचारों से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगता था कि ये अभी छपने लायक नहीं है। और फिर 1913 में सिर्फ 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया इन्फ्लुएंजा से। और शायद उनके ये विचार खो ही जाते अगर उनके 2 छात्र चार्ल्स बाली और अल्बर्ट सशिहाय आगे ना आते। उन्होंने सोसियोर के लेक्चर नोट्स, दूसरे छात्रों के नोट्स सब इकट्ठा किए, उनको सवारा, संपादित किया और 1916 में प्रकाशित करवाया, कोर द लैंग्विस्टी जनराले के नाम से। और यही वो किताब है जिसने सोसियोर को दुनिया भर में पहचान दिलाई, आधुनिक भाषा विज्ञान और सिमियोटिक्स की नींव रखी। तो एक तरह से उनकी असली कहानी उनकी मौत के बाद शुरू हुई।
तो चलिए अब आते हैं उनके उन क्रांतिकारी विचारों पर जिनकी वजह से वो इतने महत्वपूर्ण हैं। आपने कहा उन्होंने भाषा के अध्ययन का नजरिया बदला।
हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव था। उन्होंने फोकस बदल दिया। ऐतिहासिक विकास यानी डायक्रॉनिक, समय के साथ भाषा कैसे बदली, इससे हटाकर समकालिक अध्ययन यानी सिंक्रॉनिक पर ले आए। मतलब किसी एक खास समय पर भाषा एक सिस्टम की तरह कैसे काम करती है, ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने कहा भाषा को ना बिखरे हुए शब्दों का ढेर मत समझो, ये एक पूरी आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है, एक सिस्टम, एक संरचना है। और इसी सोच से उनका वो कॉन्सेप्ट निकला लैंग बनाम परोल, लैंग वर्सेस परोल। इसे समझना बहुत जरूरी है। लैंग का मतलब था भाषा की अमूर्त सामाजिक संरचना, सिस्टम, जैसे व्याकरण के नियम, शब्दों का भंडार जो पूरा समाज साझा करता है, ये भाषा का सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। और परोल है उस सिस्टम का व्यक्तिगत इस्तेमाल। जब हम असल में बोलते या लिखते हैं वो हर किसी का थोड़ा अलग होता है, ये हुआ आउटपुट। तो सोसियोर ने कहा कि भाषा विज्ञान का काम है लैंग को समझना, उस छुपी हुई व्यवस्था को जो हमारे बोलने यानी परोल को संभव बनाती है। और शायद उनका सबसे मशहूर विचार भाषाई चिन्ह का है, द लिंग्विस्टिक साइन। उन्होंने बताया कि हर भाषाई चिन्ह, जैसे कोई शब्द, वो असल में 2 चीजों का जोड़ है, एक सिक्के के 2 पहलू, अविभाज्य। एक है संकेतक, सिग्निफायर, यानी ध्वनि रूप या लिखित रूप, जैसे पेड़ शब्द की आवाज या लिखावट। और दूसरा है संकेतित, सिग्निफाइड, यानी वो अवधारणा, वो मानसिक विचार जिसकी तरफ संकेतक इशारा करता है, जैसे हमारे दिमाग में पेड़ का कॉन्सेप्ट। तो चिन्ह इन दोनों के मिलने से बनता है, सिर्फ शब्द से नहीं।
और इसी से जुड़ी है उनकी वो मनमानी प्रकृति वाली बात, है ना, कि शब्द और अर्थ का कोई सीधा कनेक्शन नहीं। ये थोड़ा अजीब लगता है, जैसे छपाक या म्याओं, इनमें तो लगता है ध्वनि का रिश्ता है।
हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सोसियोर की सबसे चौंकाने वाली बात थी, चिन्ह की मनमानी प्रकृति, आर्बिट्रारीनेस ऑफ द साइन। उनका कहना था कि संकेतक शब्द ध्वनि और संकेतित अवधारणा अर्थ, इनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से मनमाना है, आर्बिट्रारी, कोई प्राकृतिक, जरूरी या तार्किक संबंध नहीं है। पेड़ की आवाज का असली पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये रिश्ता सिर्फ सामाजिक सहमति से बना है, एक परंपरा है। इसीलिए तो एक ही चीज के लिए अलग अलग भाषाओं में बिल्कुल अलग शब्द होते हैं, हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में डॉग, फ्रेंच मशीन। अगर रिश्ता प्राकृतिक होता तो हर जगह एक ही शब्द होता ना।
हाँ, ये बात तो है।
अब रही बात छपाक या म्याओ जैसे शब्दों की, जिन्हें हम ध्वन्यात्मक कहते हैं,
ऑनोमेटोपेक।
सोसियोर मानते थे कि ऐसे शब्द बहुत कम हैं और वो भी पूरी तरह प्राकृतिक नहीं है। आप देखिए, अलग अलग भाषाओं में जानवरों की आवाज़ की नकल भी अलग अलग होती है। अंग्रेजी में कुत्ते की आवाज़ वूफ वूफ, हिंदी में भौं भौं। और ये शब्द भी भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था के नियमों में ढल जाते हैं। तो ये अपवाद जरूर हैं पर मूल सिद्धांत को नहीं तोड़ते, आधार मनमाना रिश्ता ही है। यह उस समय बहुत क्रांतिकारी था क्योंकि यह मानता था कि भाषा सिर्फ चीजों पर लेबल नहीं चिपकाती
है। यहीं पर सोसियोर का एक और गहरा और शायद सबसे अनोखा विचार आता है, मूल्य अंतर से आता है, वैल्यू फ्रॉम डिफरेंस। उन्होंने कहा कि भाषा में किसी भी चिन्ह मतलब शब्द का अपना कोई स्वतंत्र सकारात्मक मतलब नहीं होता, अंदरूनी मतलब। उसका अर्थ, उसकी पहचान पूरी तरह से उस भाषाई सिस्टम में मौजूद दूसरे चिन्हों से, उसके फर्क से, उसके विरोध अपोजिशन से तय होती है।
अच्छा,
कैसे?
जैसे लाल रंग का मतलब लाल इसलिए है क्योंकि वो नीला नहीं है, हरा नहीं है, पीला नहीं है,
वगैरह वगैरह।
या बिल्ली शब्द का अर्थ इसलिए है क्योंकि वो कुत्ता नहीं है, चूहा नहीं है, गाय नहीं है।
उनका मशहूर कथन है, भाषा में केवल अंतर होते हैं, सकारात्मक पद नहीं। मतलब हर शब्द की पहचान दूसरों से उसके फर्क पे टिकी है। अर्थ एक नेटवर्क में है, संबंधों में है, अकेले शब्दों में नहीं।
अरे, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब शब्दों का अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ रिश्तेदारी पर है।
हाँ, एक मायने में। और इसी से जुड़ा उनका अगला विचार है कि भाषा रूप है, पदार्थ नहीं। लैंग्वेज इज फॉर्म नॉट सब्सटेंस। मतलब भाषा का असली जादू उसकी भौतिक चीजों, आवाजों, स्याही के निशानों में नहीं है, बल्कि उनके बीच बने पैटर्न में है, उनके आपसी जुड़ाव में है, उनकी संरचना में है, फॉर्म में। जैसे संगीत का जादू सिर्फ सुरों में नहीं, उनके आपसी तालमेल में है, उनके बीच के गैप में है, वैसे ही भाषा का अर्थ शब्दों के सिस्टम में उनकी जगह और दूसरे शब्दों से उनके रिश्ते से पैदा होता है। और आखिर में विचार और भाषा के रिश्ते पर उनका मानना था कि भाषा के बिना हमारे विचार एक अस्पष्ट अनछुई निहारिका जैसे हैं, वेग अनचार्टेड नेबुला, धुंधले बिना आकार के। भाषा ही हमारे विचारों को काट छाट कर उन्हें आकार देती है, संरचना देती है, दूसरों तक पहुंचाने लायक बनाती है। तो भाषा सिर्फ विचारों को कहती नहीं, उन्हें बनाती भी है, संभव करती है।
ये विचार तो वाकई बहुत गहरे हैं। अच्छा, उनके मुख्य कामों की बात करें तो पहला तो वो जो 21 साल की उम्र में लिखा, मेमोआ। भले ही वो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की किताब थी, पर जैसा आपने बताया उसमें उनकी संरचनात्मक सोच की झलक थी, वो लैरिंजियल सिद्धांत वाली बात। और ये तो कमाल है कि उनकी भविष्यवाणी दशकों बाद सच हुई। और जाहिर है दूसरा और सबसे असरदार काम कूर दे लैंग्विस्टिक जनरल 1916 वाला, जो उनकी मौत के बाद आया, छात्रों ने तैयार किया, पर इसी ने आधुनिक भाषा विज्ञान और सिमियोटिक्स की दुनिया बदल दी। इसी में उनके सारे बड़े सिद्धांत, लैंग और परोल, चिन्ह की मनमानी प्रकृति, अंतर का सिद्धांत, सिंक्रोनिक बनाम डायक्रोनिक, सब एक साथ व्यवस्थित तरीके से आए। 20वीं सदी की सबसे असरदार किताबों में से एक। इनके अलावा कुछ और तकनीकी लेख भी थे, लिथुआनियाई लहजे पर, बाल्टिक भाषाओं की संरचना पर। उनमें भी भाषा को एक सिस्टम की तरह देखने की उनकी दिलचस्पी दिखती है।
अगर हम सॉस्योर की तुलना करें उनके समय के दूसरे भाषाविदों से, खासकर नियो ग्रामेरियन से, तो फर्क बिल्कुल साफ है। नियो ग्रामेरियन तो पूरी तरह से इतिहास में डूबे थे, भाषाएं कैसे बदलीं, ध्वनि परिवर्तन के नियम क्या थे वगैरह, जबकि सॉस्योर ने कहा, रुको भाई, पहले ये तो समझें कि भाषा अभी इस वक्त कैसे काम करती है, इसकी अंदरूनी मशीनरी क्या है। ये फोकस में एक बुनियादी बदलाव था, इतिहास से संरचना पर। और ये भी दिलचस्प है कि हालांकि सॉस्योर ने काफी अकेले में काम किया, पर उनके विचार उस समय की दूसरी बड़ी बौद्धिक धाराओं से मेल खाते हैं। जैसे हमने बात की, फ्रॉयड अचेतन की संरचना खोज रहे थे, दुर्खीम समाज की संरचना, ये सभी विचारक एक तरह से सतह के नीचे काम कर रही अदृश्य व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे,
अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स।
लेकिन सॉस्योर का अनूठापन इस बात में था कि उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से भाषा की आंतरिक संरचना पर लगाया और एक ऐसा मजबूत वैचारिक ढांचा तैयार किया जिसका इस्तेमाल आगे चलकर सिर्फ भाषा तक नहीं रहा, मानविकी, समाज विज्ञान, लगभग हर क्षेत्र ने उनके विचारों से कुछ न कुछ लिया।
संस्कृति, मिथक, साहित्य, समाज, यहाँ तक कि मनोविश्लेषण के अध्ययन में भी उनके सिद्धांत लागू हुए।
हाँ, उनका असर तो वाकई बहुत जबरदस्त रहा है, खासकर उनकी मृत्यु के बाद। कोर्स छपने के बाद धीरे धीरे फैले उनके विचार और फिर तो जैसे एक बौद्धिक विस्फोट हुआ।
सबसे पहले तो भाषा विज्ञान में ही, रोमन जैकोबसन, प्राग स्कूल, इन भाषाविदों ने उनके संरचनात्मक सिद्धांतों को अपनाया, आगे बढ़ाया। उन्होंने भाषा की ध्वनि प्रणाली, व्याकरण, इन सब के विश्लेषण के लिए सॉस्योर के अंतर और सिस्टम वाले विचारों का इस्तेमाल किया। इसी से संरचनात्मक भाषा विज्ञान, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स की शुरुआत हुई,
जिसे हम संरचनावाद कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म। ये तो एक पूरा आंदोलन बन गया। जैसे मानव विज्ञानी क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस उन्होंने सोस्योर के मॉडल का इस्तेमाल किया दुनिया भर के मिथकों और रिश्तेदारी की व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने के लिए। उन्होंने दिखाया कि इन सबके पीछे भी भाषा की तरह ही गहरी छिपी हुई संरचनाएं काम करती हैं। ये बिल्कुल नया तरीका था संस्कृतियों को समझने का, और रोलैंड बार्थ का नाम भी आता है। उन्होंने तो सोस्योर के संकेत विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर दिया। अपनी किताब मिथोलॉजीज में उन्होंने विज्ञापन, फैशन, कुश्ती, खिलौने, इन सब में छिपे सांस्कृतिक संकेतों और अर्थों का विश्लेषण किया, दिखाया कि समाज कैसे इनके जरिए अपने मिथक बनाता है। फिर मनोविश्लेषण में जैक्स लेकॉन ने कहा कि अचेतन भाषा की तरह संरचित है, और मिशेल फूको उन्होंने ज्ञान, शक्ति और प्रवचन के विश्लेषण में सोस्योरियन विचारों का इस्तेमाल किया।
बिल्कुल। और फिर संरचनावाद के बाद जो दौर आया, उत्तर संरचनावाद, विखंडन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, उसने भी सोस्योर को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि जैक्स डेरिडा जैसे विचारकों ने सोस्योर के अंतर वाले सिद्धांत को ही पकड़ा और उसे और आगे खींचा। डेरिडा ने तर्क दिया कि अगर अर्थ सिर्फ अंतरों से ही आता है तो वो कभी भी पूरी तरह से स्थिर या उपस्थित नहीं हो सकता, वो हमेशा टलता रहता है, फिसलता रहता है, डिफर्ड। तो देखिए, सोस्योर के विचार इतने प्रोवोकेटिव थे कि उन्होंने अपने समर्थकों को भी प्रेरित किया और आलोचकों को भी, और बहस को आगे बढ़ाया।
तो मतलब आज भी उनकी विरासत जिंदा है, आज के दौर में भी प्रासंगिक है उनके विचार।
निश्चित रूप से। आज भले ही संरचनावाद एक आंदोलन के तौर पर उतना ना सुना जाता हो, लेकिन सोस्योर के बुनियादी विचार कि भाषा एक सिस्टम है, अर्थ सापेक्ष है, संकेत मनमाने हैं, ये सब तो साहित्यिक सिद्धांत, सांस्कृतिक अध्ययन, मीडिया स्टडीज, समाजशास्त्र, इन सब की नींव में रच बस गए हैं। ये समझ कि हमारी वास्तविकता, हमारी दुनिया की समझ काफी हद तक भाषा और दूसरी संकेत प्रणालियों से घड़ी जाती है, ये सोस्योर की बहुत बड़ी देन है। और उनकी प्रासंगिकता आप देखिए तकनीकी दुनिया में भी है। संज्ञानात्मक विज्ञान, डिजिटल मानविकी, इनमें उपयोगी हैं। कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान, खासकर NLP जो AI का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं भाषा को एक सिस्टम के रूप में समझने के सोस्योरियन सिद्धांतों पर ही आधारित है। यहाँ तक कि गूगल सर्च कैसे काम करता है या अमेज़न कैसे रिकमेंडेशन देता है, उसके पीछे भी चीज़ों, शब्दों, अवधारणाओं के बीच के संबंधों और अंतरों का विश्लेषण करने वाले एल्गोरिदम्स होते हैं, उनमें भी सोस्योर के विचारों की गूंज है।
अच्छा, जहाँ तक उनकी टर्म के रूपांतरण, अडेप्टेशंस की बात है, जाहिर है उनकी किताबों पर कोई सीधी फिल्म या नाटक तो नहीं बना होगा, लेकिन उनके विचारों को अलग अलग कलात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में रूपांतरित या लागू जरूर किया गया है। जैसे हमने लेवी स्ट्रॉस और बार्थ की बात की, या फिर फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा, खासकर गोदार की फिल्में, वो अक्सर सिनेमाई भाषा के संकेतों, उसकी परंपराओं के साथ खेलती हैं, उन्हें तोड़ती हैं। उनमें भी सोस्योर का अप्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। चलिए अब सोस्योर के कुछ मशहूर कथनों पर एक नज़र डालते हैं जो उनके मुख्य विचारों का सार है। पहला, संकेतक और संकेतित के बीच का बंधन मनमाना है। मतलब शब्द और उसके पीछे की अवधारणा में कोई कुदरती रिश्ता नहीं, ये समाज की सहमति या आदत है।
हाँ। दूसरा, भाषा में केवल अंतर होते हैं, सकारात्मक पद नहीं। यानी किसी शब्द का अपना कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब सिस्टम में दूसरे शब्दों से उसके फर्क के कारण है। हर शब्द की पहचान वो है जो वो नहीं है।
तीसरा, भाषाई चिन्ह एक चीज और नाम को नहीं, बल्कि एक अवधारणा और एक ध्वनि छवि को जोड़ता है। ये इस बात पर जोर देता है कि भाषा सीधे दुनिया की असल चीजों से नहीं जुड़ती, बल्कि हमारे मन की अवधारणाओं को ध्वनि या लिपि के रूप से जोड़ती है।
चौथा, भाषा एक रूप है, पदार्थ नहीं। मतलब भाषा का सार उसके मटीरियल, जैसे आवाज या अक्षर में नहीं, बल्कि उस मटीरियल को व्यवस्थित करने वाले नियमों और संरचना में है, फॉर्म में है।
पांचवां, भाषा परस्पर निर्भर पदों की एक प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक पद का मूल्य केवल दूसरों की एक साथ उपस्थिति से उत्पन्न होता है। ये फिर से भाषा के सिस्टम होने पर जोर देता है, जहां हर हिस्से का महत्व पूरे सिस्टम में उसकी जगह और दूसरे हिस्सों से उसके रिश्ते पर निर्भर है।
और छठा, भाषा के बिना विचार एक अस्पष्ट, अनछुई निहारिका है।
ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ हमारे पहले से बने विचारों को आवाज नहीं देती, बल्कि हमारे विचारों को आकार देने, उन्हें साफ करने और यहां तक कि उन्हें संभव बनाने में भी मदद करती है। सोस्योर के बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं. जैसे हमने सुना वो एक बड़े वैज्ञानिक परिवार से थे, उसका असर उनकी व्यवस्थित सोच पर पड़ा होगा. बचपन से ही कई भाषाएं जानते थे, जिसने शायद उन्हें भाषाओं की अंदरूनी बनावट समझने में मदद की. और उनके डॉक्टरेट शोध में वो जो लैरिंजियल ध्वनियों की भविष्यवाणी थी, उसका दशकों बाद हिट्टाइट भाषा की खोज से सही साबित होना, ये तो अद्भुत है.
और कितनी बड़ी विडंबना है कि अपने सबसे जरूरी विचारों को लेकर वो इतने संकोची थे कि खुद कभी प्रकाशित नहीं करवाया. उनकी सबसे मशहूर किताब कोर्स उनकी मौत के बाद उनके छात्रों ने दुनिया के सामने रखी. और हाँ, उन्हें फ्रांस सरकार ने 1891 में शिवेलियर डे ललेजन डी हॉनोर सम्मान भी दिया था. तो आखिर में सोस्योर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, शायद थोड़ा बेचैन करने वाला भी. उन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि भाषा सिर्फ विचारों के लेन देन का एक साधन नहीं है, बल्कि शायद वो चश्मा है, वो ढांचा है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और रचते भी हैं. ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारी सच्चाई की समझ, हमारे सोचने का पूरा तरीका भाषा की उन अदृश्य, मनमानी, सामाजिक रूप से बनी संरचनाओं से कितना ज्यादा बंधा हुआ है, जिन्हें हम रोजमर्रा में बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं बिना सवाल उठाए. क्या यह मुमकिन है कि हम भाषा की खींची इन सीमाओं के पार जाकर सोच सकें, या हमारी चेतना हमेशा भाषा के इस जाल में ही रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं.
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.